सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं कम्मठजनियवेयण उवहि समुत्तिण्णये जिणेणमिं वेयणमहाहियारं विविहियारं परुवेमो। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित धौला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। आज से 11वीं पुस्तक जो चतुर्थ वेदनाखंड, वेदनाखंड की ही बात चल रही है और उसमें वेदना खेत विहानाणु योग दारम चल रहा है। वेदना द्रव्य विधान हमने देखा था, अभी यहाँ वेदना क्षेत्र विधान चलेगा, उसका अनुयोग द्वार आज से यहाँ शुरू होता है। पहले ही सूत्र से, पहले पृष्ठ से शुरू करते हम पढ़ते हैं यहाँ। वेदना खेत विहाणेति तथ इमाणी तिन्नी अनुयोग दाराणी नादववाणी भवंती। वेदना क्षेत्र विधान यह जो अनुयोग द्वार है उसमें ये तीन अनुयोग द्वार ज्ञातव्य है। इस अधिकार के भी और सब अधिकार जो कुछ बताएंगे, इसमें तीन बात बताएंगे। वेदना में निक्षिप्त क्षेत्र का यहाँ निक्षेप करना चाहिए, यानी यहाँ जो वेदना यानी कर्म है उसका क्षेत्र कितना है, तो जितने जीव का प्रदेश होगा उतना उसका क्षेत्र होगा, तो उस क्षेत्र की यहाँ बात होगी। शंका, क्षेत्र का निक्षेप किस लिए करते हैं, उसका समाधान, यानी क्षेत्र की बात क्यों जानना चाहते हैं हम। अप्रकृत क्षेत्र स्थान का प्रतिषेध करके प्रकृत क्षेत्र की अर्थ प्ररूपणा करने के लिए क्षेत्र का निक्षेप करते हैं, यानी अन्य क्षेत्रों की बात नहीं, प्रकृत क्षेत्र यानी यहाँ वेदना वाला क्षेत्र की हमें कंसर्न है, उस वही हमें इष्ट है, तो उसकी यहाँ बात करेंगे। कहा भी है ये एक नंबर का जो गाथा जो है एक नंबर की, उसको पढ़ेंगे। अपयदनिवारणार्थं पयदस्य परुवणानिमित्तं च संशय विनाशनार्थं तच्चत्थव्यवहारणार्थं च। अप्रकृत का निवारण करने के लिए हमें जो विवक्षित बात है उसकी बात बताएंगे और जो अविवक्षित उसका निराकरण करेंगे, निवारण करेंगे। प्रकृत की प्ररूपणा करने के लिए, जो हमें इष्ट है उसकी प्ररूपणा करने के लिए, संशय विनाशनार्थम यानी संशय को नष्ट करने के लिए, उस संबंध में हमें जो कोई संशय है, आशंका है, हमारे मन में कोई प्रश्न उठते हैं उसका निवारण करने के लिए, और तत्वार्थ का निश्चय करने के लिए, देखा ना, तच्चत्थ वहारण ठम, अवहारण, अवहारण करने ने अवधारण करना, तत्वों का अवधारण करने ने तत्वार्थ का निश्चय करने के लिए निक्षेप किया जाता है। यानी क्षेत्र पर ये निक्षेप बताएंगे हमने, देखा ना, किसी भी चीज को हमें पढ़ना है तो वहां वो निक्षेप के द्वारा पहले समझाते हैं। तो क्षेत्र चार प्रकार का है, यानी इसमें चार निक्षेप हो गए, वैसे ज्यादा होते हैं परंतु मिनिमम इतने तो होते ही होते हैं। तो है नाम क्षेत्र, स्थापना क्षेत्र, द्रव्य क्षेत्र और भाव क्षेत्र। उनमें नाम क्षेत्र और स्थापना क्षेत्र सुगम है। किसी क्षेत्र का हमने नाम रख दिया, ऐसे सिद्ध सम्यक शिखर है, परंतु अभी हमने अन्य किसी का नाम, पर्वत का भी सम्यक शिखर रख दिया नाम, हम नाम तो रख सकते हैं ना, तो ये नाम हो गया उसका। और स्थापना क्षेत्र, अभी हम समय शिखर नहीं जा सकते, हमने यहाँ कोई सोपारी रख दी और कहे ये संवेदा चले, तो ये हमने उसमें स्थापना कर दी। ये तो चित्रों में होते हैं, मॉडल में होता है ना, उसकी स्थापना कर सकते हैं हम। द्रव्य क्षेत्र, अभी द्रव्य क्षेत्र और भाव क्षेत्र की बात करेंगे। द्रव्य क्षेत्र, आगम और नवागम द्रव्य क्षेत्र के भेद से दो प्रकार है, ये हमने बहुत बार देखा है, उसकी अभी बात करेंगे। आगम द्रव्य क्षेत्र किसको कहना, तो उसमें क्षेत्र प्रावृत का जानकार, क्षेत्र संबंधी जो प्रावृत है, जिनेन्द्र भगवान की जो वाणी है उसका जानकार, उपयोग रहित जीव आगम द्रव्य क्षेत्र कहलाता है। और नो आगम द्रव्य क्षेत्र, उसके कितने भेद हो गए, न्यायिक शरीर, भावी और तद व्यतिरिक्त के भेद से तीन प्रकार का है। उनमें न्यायिक शरीर और भावी नोआगम द्रव्य क्षेत्र सुगम है, हमने बहुत बार देखा है। न्यायिक शरीर यानी वो जानने वाले जीव का शरीर, भले वो भूत भूत यानी भूत पर्याय गए भव का हो, अभी का हो या आगे के भव का। भावी यानी वो जीव अभी भविष्य में जानेगा वो जीव। और तद व्यतिरिक्त में, तद व्यतिरिक्त नोआगम द्रव्य क्षेत्र क्षेत्र है, वह दो प्रकार है, एक क्षेत्र दो बार क्यों लिखा, क्षेत्र आकाश नहीं आकाश लिखना चाहिए, देखो ऊपर, तव विवृत्त नो आगम क्षेत्रम आकाश, ये मैं पढ़ रही अभी पांचवी लाइन। तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य क्षेत्र आकाश है, क्षेत्र के बदले आकाश होना चाहिए। और वह दो प्रकार का है, लोकाकाश और अलोकाकाश। मूल में अभी प्राकृत में पढ़ना चाहिए। हाँ देखो, वह दो प्रकार का है, लोकाकाश और अलोकाकाश। इनमें जहां जीवादिक पदार्थ देखे जाते हैं या जाने जाते हैं वह लोक है। लोक अवलोक्यते इति लोकः, यह अवलोकन किए जाते हैं, पाए जाते हैं, देखे जाते हैं, कौन जीवादि अन्य पदार्थ, उसको लोक कहते हैं। उससे विपरीत अलोक है, यानी जहां वे नहीं देखे जाते वो अलोक है। आलोक कहे तो क्या अर्थ होगा पता है, आलोक किसको कहते हैं, अलोक है उसको अलोकाकाश है। आलोक अ का आ करेंगे तो क्या होगा, नहीं आलोक ज्ञान का कारण है, इंद्रिय से ज्ञान उपजता है, यह मान रहा था पर क्यों कर जड़ चेतन सर्जन करता है। आलोक यानी प्रकाश पूजा में आता है ना, हम अभी हम अभी तक क्या मानते हैं, प्रकाश है वो ज्ञान का कारण है, ऐसा मानते हैं ना।
अंधेरे में कुछ दिखता नहीं, ज्ञान नहीं होता है, आलोक का ज्ञान का कारण है और इंद्रिय से ज्ञान उपजता है, ऐसा लोग मानते हैं।
उसमें बोलना, हाँ अच्छा, ये आलोक का अर्थ होता है प्रकाश, और अलोक यानी अलोकाकाश, अलोक जो लोक नहीं वो अलोक। शंका आलोक नो भाई नहीं, इस लोक का भाई, वो आने वो दिखाने के लिए आने वो उसके जिसको सर्वनाम कहते ना, यह वह उसके लिए आ और लोक ये अलग अलग लिखा है, और ये आलोक पूरा एक शब्द है, आलोक नाम भी होता ना, हाँ आलोक, हाँ
ये गुजराती में आलोक आएगा,
आलोक हम कहते
इस लोक का भय, परलोक का भय, या यह लोक का भय, ऐसा भी कहते,
यह लोक भी कहते ना उसको, यह नहीं यह लोक, आ लोक गुजराती में तो आ कहते,
आ नहीं पेलू परलोक
है। अब शंका, आकाश की क्षेत्र संज्ञा कैसे है, आकाश को क्षेत्र क्यों कहा है, उसका समाधान, क्षीयंती अस्मिन अर्थात जिसमें जीवादिक रहते हैं वह आकाश है। इस निरुक्ति के अनुसार आकाश को क्षेत्र कहना उचित ही है। यह द्रव्य क्षेत्र की बात हो गई। अब भाव क्षेत्र आगम और नो आगम भाव क्षेत्र के भेद से दो प्रकार का है। उनमें क्षेत्र प्रावृत का जानकार उपयोग युक्त जीव आगम भाव क्षेत्र है। सब द्रव्यों का अपना अपना भाव नो आगम भाव क्षेत्र कहलाता है। अपना अपना भाव अपनो भावो नो आगम भाव कितम। अब शंका भाव की क्षेत्र संज्ञा कैसे हो सकती। भाव को क्षेत्र कहा या प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना भाव उसको यहाँ क्षेत्र कहा है नो आगम भाव क्षेत्र कहा। तो समाधान उसमें सब द्रव्यों का अवस्थान होने से भाव की क्षेत्र संज्ञा बन जाती। ये इसका अर्थ समझ में आया। किस में रहते हैं? नहीं उसकी बात नहीं है। सभी द्रव्य अपने अपने भावों में रहते हैं, गुण पर्यायों में बसते हैं ना, इसीलिए वस्तु कहा उसको। तो द्रव्य अपने भावों में रहते हैं इसलिए उनके भावों को द्रव्य के अपने अपने भाव को यहाँ क्षेत्र कहा। ये अच्छी डेफिनेशन है। यहाँ नो आगम द्रव्य क्षेत्र का अधिकार है। किसका कहा? नो आगम द्रव्य क्षेत्र भाव की बात नहीं। अपना अधिकार जो क्षेत्र का अधिकार चलेगा उसमें नो आगम द्रव्य क्षेत्र। नो आगम द्रव्य क्षेत्र हमने कौन सा देखा था? न्यायिक शरीर वगैरह तद व्यतिरिक्त में लोकाकाश अलोकाकाश आदि देखा था। तो यहाँ नो आगम द्रव्य क्षेत्र का अधिकार है। आठ प्रकार के कर्म द्रव्य की वेदना संज्ञा है। आठ प्रकार के कर्मों को ही वेदना कहा है। यहाँ वेदना का क्षेत्र कहते हैं ना, तो आठ प्रकार के कर्मों का जो क्षेत्र है वेदना का क्षेत्र वेदना क्षेत्र, वेदना क्षेत्र का विधान वेदना क्षेत्र विधान। यह पांचवे अनुयोग द्वार का गुण नाम है। गुण नाम वगैरह हमने देखा, गुण नाम वगैरह हमने देखा था, प्रधान नाम, उसके गुण के अकॉर्डिंगली उसको नाम रख देखना, वो उसका गुण नाम है। वेदना का अधिकार जो है, वेदना का क्षेत्र जो है, उसको वेदना क्षेत्र अधिकार बताया। सूत्र में स्थित इति शब्द व्यवच्छेद करने वाला है। उस विधान क्षेत्र उस वेदना क्षेत्र विधान में ये तीन अनुयोग द्वार है। यहाँ लिखा ना वेदना क्षेत्र विहाने ती, अब आगे ये तीन अनुयोग द्वार उन्होंने नाम बताए थे। कौन कौन से? नहीं अभी नाम नहीं बताए, अभी नाम आएंगे आगे। हाँ अब शंका, यहाँ केवल तीन अधिकारों की प्ररूपणा किस लिए की जाती है? समाधान, नहीं क्योंकि और दूसरे अधिकार यहाँ संभव नहीं है। कारण कि संख्या स्थान और जीव समुदाहार तो यहाँ संभव नहीं है। जैसे हमने योगों के वगैरह में देखे थे उसमें जीव कितने होते हैं क्या होते हैं, वैसी यहाँ बात नहीं है। जीव समुदाहरण वहाँ जीवों की संख्या। समुदाहार ये बाद में आने वाला है, पूरा समुदाहार वाला 308 पृष्ठ पर वहां से शुरू होने वाला है। अनुक्रमणिका में देखा मैंने अभी। यानी उसके हाँ समुदाय कितने जीव है कितने नहीं है, देखो पेज नंबर 310 निकालना। नीचे से चौथी लाइन, वहां जीव समुदाहार किसको कहते नहीं कहा, परंतु ये जीव समुदाहार किस लिए आया है, तो कहते साता व असाता की एक एक स्थिति में इतने जीव है और इतने नहीं है, यानी जीवों का समूह, वहां जीवों की संख्या, उसको जीव समुदाहार कहा। यानी यहां कर्म का क्षेत्र बता रहे हैं, तो उसमें वो संख्या स्थान क्षेत्र में वो संख्या स्थान और जीव समुदाहार यहां नहीं होंगे, क्योंकि उनका अंतर्भाव उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जघन्य व अजघन्य भेद से भिन्न स्वामित्व अनुयोग द्वार में होता है। जैसे उत्कृष्ट क्षेत्र कितना होता है, उतने जीव कितने होंगे उसमें, जघन्य क्षेत्र वाले जीव कितने होंगे उसमें, वो जीवों की बात आ जाएगी, वो स्वामित्व के अंतर्गत उसका भेद बताया जाएगा। ओज युग्म अनुयोग द्वार भी संभव नहीं है। हमने पहले 13 देखे थे ना अलग अलग वो पदों के भेद, तो ओज और युग्म भी संभव नहीं, क्योंकि उसका प्रवेश पद मीमांसा में है। ये मूल अधिकार 3 ही क्यों बताए, क्योंकि पद मीमांसा के ही वे भेद है ओज युग्म आदि, इसलिए उसका भी अलग से कथन नहीं है। गुणाकार अनुयोग द्वार भी संभव नहीं है, क्योंकि उसका प्रवेश अल्प बहुत्व में है, इस कारण 3 ही अनुयोग द्वार है। यानी इनका कथन तो होगा परंतु इनके अंतर्भूत ही बताया जाएगा, तब ये कौन से 3 अनुयोग है उसको बताएंगे। पदमीमांसा सामित्तम अप्पा बहुयेत्ति, पदमीमांसा स्वामित्व और अल्प बहुत्व, ये 3 अनुयोग द्वार यहाँ ज्ञातव्य है। शंका, कल हमने पदमीमांसा की बात उसमें से 10वें नंबर के पुस्तक में से पढ़ी थी, पुस्तक पूर्ण होने पर, क्योंकि वो आज काम में आने वाली है। इसलिए कहते हैं पद यानी वो शब्द जिसमें कोई अर्थ भाषित होता है उसको कहते हैं पद, और उसकी मीमांसा यानी उसमें भी वो अलग अलग पद जो आते हैं कि जघन्य है, उत्कृष्ट है, अनुत्कृष्ट है, आदि है, अनादि है, ध्रुव है, अध्रुव है, ये उसके भेद है, ये ओज है, युग्म है, वगैरह वगैरह। तो हाँ, उसकी मीमांसा ने उसका विवेचन, उसका कथन, उसके डिटेल्स बताना। तो पद मीमांसा को पहले ही किस लिए कहा जाता है, समाधान, चूंकि पदों का ज्ञान न होने पर ये उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट आदि बातें नहीं बताएंगे तो उसका स्वामित्व कथन कैसे करेंगे। हम पहले भेद करके बताएंगे ना, ये उत्कृष्ट वाला है, ये ध्रुव है, ये अध्रुव है, ये अनादि है, सादि जो कुछ है, ऐसा जब हम कहेंगे तब उसमें उसके स्वामी जीव कौन है या उसका कौन से कर्म की वो बात है वो बताएंगे। यदि पद ही नहीं बताया तो वो बाकी आगे के अनुयोग द्वार संभव नहीं है। तो पदों का ज्ञान न होने पर स्वामित्व और अल्प बहुत्व की प्ररूपणा की नहीं जा सकती, अतएव पहले पद मीमांसा की प्ररूपणा की जा रही है। शंका, उसके पश्चात स्वामित्व अनुयोग द्वार को ही किस लिए कहते हैं। उसका समाधान, क्योंकि पद प्रमाण स्वामी का ज्ञान न होने पर उनका अल्प बहुत्व बन नहीं सकता। ये उत्कृष्ट में कितने जीव है ऐसा बताएंगे या कौन सा कर्म है वो बताएंगे तो बाद में फिर उसको स्वामित्व में उसका अल्प बहुत्व कह सकते हैं। इस कारण निर्दोष होने से उक्त अधिकारों की इसी विन्यास क्रम को स्वीकार करना चाहिए, यानी इसी ऑर्डर में उसको बताएंगे, पहले पद मीमांसा, फिर स्वामित्व और फिर अल्प बहुत्व। पद मीमांसाए नाना वर्णीय वेणा खेतदो किम उक्कसा किम अनुक्कसा किम जहन्ना किम अजहन्ना। पद मीमांसा में ज्ञानावरणीय की वेदना क्षेत्र की अपेक्षा, अभी क्षेत्र की अपेक्षा लगाना। वेदना द्रव्य विधान में पद मीमांसा आदि अधिकार आए थे, परंतु द्रव्य विधान में संख्या आती है, तो वहां ज्ञानावरणी की उत्कृष्ट किसके होगी, तो हमने वो पूरा नारकी के अंतिम भौतक को गुणित कर्मांशिक को घुमाया था, और जघन्य किसको होगी तो क्षपित कर्मांशिक को क्षीण कषाय के अंत समय में लिया था। अब उसकी बात यहाँ नहीं है, अब यहाँ कर्मों की संख्या की, परमाणु की संख्या की बात नहीं होगी, वो कितना क्षेत्र व्याप्त है उसको देखेंगे। ख्याल है, अभी यहाँ क्षेत्र की ही बात होगी हर समय, अब यहाँ परमाणु की संख्या की बात यहाँ नहीं होगी। तो ज्ञानावरणीय की वेदना क्षेत्र की अपेक्षा क्या उत्कृष्ट है, क्या अनुत्कृष्ट है, क्या जघन्य है और क्या अजघन्य है, यहाँ प्रश्न चिन्ह लगाना चाहिए। मूल सूत्र में वो प्रश्न चिन्ह है ना, ये प्राकृत पढ़ा था ना, पद मीमांसा ज्ञानावरणीय वेदना। हाँ, अब आगे अगले पेज पर सूत्र में ज्ञानावरण पद का ग्रहण करके शेष कर्मों का प्रतिषेध किया है। पहले ज्ञानावरण की बात हो रही है इसलिए ज्ञानावरण शब्द रखा उसमें। द्रव्य, काल और भाव आदि का प्रतिषेध करने के लिए क्षेत्र का निर्देश किया है। यानी यहाँ द्रव्य की बात नहीं है, यानी संख्या की बात नहीं होगी, कितने काल तक रहता है उसकी स्थिति की बात नहीं है, उसमें कितना फल देने का भाव क्या है अनुभव उसकी बात नहीं। यहाँ बात किसकी, क्षेत्र की, कितना क्षेत्र व्याप्ता है। हाँ, आपका कहना है क्षेत्र सभी जगह समान होगा। अभी निगोद वाला जो जीव है जिसकी शरीर की अवगाहना इतनी छोटी है, वो ज्ञानावरण का भी द्रव्य उतने कम क्षेत्र में व्यापेगा। और केवली समुद्धात में होगा कि नहीं होगा, ज्ञानावरण होगा, ज्ञानावरण नहीं होगा तो ज्ञानावरण ज्यादा कहाँ होगा, वो महामत्स्य में। और फिर वो महामत्स्य और मारणांतिक समुदात करे तो और वो बढ़ेगा ना क्षेत्र। इस तरह से उसको बताएंगे, अभी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे उसको। हाँ, अवगाहना, शरीर की अवगाहना लेना, तो क्षेत्र के भेद भी उसी अपेक्षा से बताएंगे। तो कहते अन्य द्रव्य, काल और भाव की बात नहीं है, यहाँ क्षेत्र की बात है। यह पृच्छा सूत्र देशामर्शक है, इसलिए इसके द्वारा अन्य 9 पृच्छाएं सूचित की गई है। अभी अन्य 9 पृच्छाएं कौन सी होगी पता है, कल हमने 13 देखी थी। देखो यहाँ तो 4 बता दिए, उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य, अजघन्य, सादी और अनादि, ध्रुव और अध्रुव, फिर ओम, विशिष्ट, ओज और युग्म, ओज और युग्म, फिर ओम विशिष्ट और नोम नो विशिष्ट, ऐसे 13 देखे थे हमने। तो इसमें तो 4 ही बताए, तो ये 13 समझ लेना। यहाँ लिखा है क्या आगे, देखो देखते। इस कारण ज्ञानावरणी की वेदना क्या उत्कृष्ट है, अभी क्या उत्कृष्ट है में क्षेत्र की अपेक्षा ही लगाना हो, अभी यहाँ संख्या की बात नहीं है। क्या उत्कृष्ट है, क्या ये अभी 13 नंबर डालो इसमें, तो क्या उत्कृष्ट है, क्या अनुत्कृष्ट है दूसरा नंबर, तीसरे पर क्या जघन्य है, चौथे में क्या अजघन्य है, ये 4 तो यहाँ लिखे ही थे, पांचवें क्या सादिक है और छठे में क्या अनादिक है, सातवें में क्या ध्रुव है, आठवां प्रश्न है क्या अध्रुव है, नौवां क्या ओज है, ओज यानी विषम, और क्या युग्म यानी सम, दसवां नंबर, फिर क्या ओम है, ओम का अर्थ याद है, ओम यानी वो व्यय, और विशिष्ट यानी व्यय से आय ज्यादा हो उसको विशिष्ट कहा था ना हमने कल, हाँ, देखा था हमने, क्या विशिष्ट है, और क्या नोम, नोम लिखा है परंतु नोम नो विशिष्ट है, यानी दोनों भी नहीं, ऐसा ऐसा कहना चाहिए। इस प्रकार सामान्य चूंकि विशेष का अविनाभावी है, ये इसीलिए कल पढ़े थे ना ये सारे 13 हमने, नहीं तो ये क्या बात चल रही थी ऐसे पता नहीं लगता। देखो इस प्रकार सामान्य चूंकि विशेष का अविनाभावी है, इसका अर्थ समझ सकते हैं आयुष्मान भाई, सामान्य विशेष का अविनाभावी है यानी क्या, हाँ जहाँ सामान्य है वहीं पर विशेष होता है, और जहाँ है सामान्य वहाँ विशेष भी होगा ही होगा, और जहाँ विशेष है वहाँ सामान्य भी है ही है। द्रव्य पर्याय में भी और कहीं भी सामान्य विशेष की जहाँ बात आती है, जहाँ गुण है उसका पर्याय है। अब जहाँ द्रव्य को सामान्य कहेंगे तो गुण को विशेष कहेंगे, गुण को सामान्य कहेंगे तो पर्याय को विशेष कहेंगे। तो जहां भी राग की पर्याय ले लो, पर्याय है ना, विशेष है, तो वहां उसका सामान्य कौन है? राग ये विशेष हुआ, चारित्र गुण वो सामान्य है। तो अभी हम सामान्य की दृष्टि करने को बोलते हैं तो लोग क्या पूछते हैं, अरे वहां पर्याय है कि नहीं? अरे है, अभी उसको सबको गौण कर दिया है, गर्वित कर दिया है सामान्य में। तो यहाँ क्या, ये दूसरी बात यहाँ बता रहे हैं कि सामान्य चूंकि विशेष का अविनाभावी है, यानी जहाँ सामान्य वहाँ विशेष है, सामान्य और विशेष एक साथ होते ही है, सामान्य के बिना विशेष नहीं और विशेष के बिना सामान्य नहीं, उसको कहते हैं अविनाभावी। अतः विशेष का अभाव होने से सामान्य स्वरूप ज्ञानावरणीय वेदना के विषय में इन 13 पृच्छाओं की प्ररूपणा की गई है। ज्ञानावरणीय वेदना कहेंगे तो सामान्य हो गया, अब उनके विशेष बताना है तो उत्कृष्ट क्षेत्र अनुत्कृष्ट क्षेत्र, इस तरह से क्षेत्र की बात बता रहे ना, तो उसमें 13 भेद डाल के ये उसके विशेष हुए। सामान्य से कहना है तो ज्ञानावरणीय की वेदना बस कितनी होती है, क्षेत्र उसका कितना होता है, और विशेष कहना तो ये 13 भेदों से बताएंगे उसको। यथा उत्कृष्ट ज्ञानावरण वेदना, अभी एक एक पर बाकी सब अप्लाई करना, जो उत्कृष्ट ज्ञानावरण वेदना है वह क्या अनुत्कृष्ट हो सकती है क्या नहीं हो सकती? जो उत्कृष्ट है वो उत्कृष्ट ही रहेगी ना। हाँ, क्या जघन्य है? उत्कृष्ट को जघन्य कह सकते हैं क्या? नहीं। क्या अजघन्य है? उत्कृष्ट को अजघन्य कह सकते हैं? कह सकते हैं। जो उत्कृष्ट है वो अजघन्य है ना, वो जघन्य नहीं है, अजघन्य कह सकते उसको, ख्याल है ना। क्या सादिक है? उत्कृष्ट जो वेदना है वो सादिक है क्या अनादि से? सादिक है, क्योंकि जो बड़ी अवगाहना उसने धारण की उसको आदि है, इस तरह से वो अभी बताएंगे आगे। क्या अनादि है? सामान्य पने लेंगे तो अनादि उसको क्षेत्र है। क्या ध्रुव है? क्या अध्रुव है? क्या ओज है? क्या उग्म है? क्या ओम है? क्या विशिष्ट है? यानी अभी वो उत्कृष्ट पर ये बाकी सब लगा रहे हैं, एक एक लेके उस पर वो ये सब भंग देखेंगे। क्या नोम नो विशिष्ट है? ये 12 पृच्छाएं उत्कृष्ट पद के विषय में होती है। हमने पहले 13 प्रश्न निकाले, अब उसमें से एक निकाला पद क्या उत्कृष्ट है। जो उत्कृष्ट है वह अनुत्कृष्ट हो सकती है क्या? जघन्य हो सकती है क्या? अजघन्य हो सकती है क्या? सादी हो सकती है क्या? अनादि हो? ये रिमेनिंग 12 प्रश्न उस पर लगाना है। इसी प्रकार शेष पदों में से भी शेष हुआ है, शेष यानी अभी कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन कैसे करें, एक एक को लेना प्रश्न को, यानी 13 बार प्रश्न लेंगे हम क्रम से, एक एक को लेंगे और उस पर उसको छोड़कर जो शेष 12 है वो उस पर अप्लाई करके देखेंगे। सभी अप्लाई एप्लीकेबल नहीं होगे, उसमें से कोई विशिष्ट एप्लीकेबल होगे, कोई नहीं होगे। जैसे जो उत्कृष्ट है वो अनुत्कृष्ट नहीं हो सकती, जो जघन्य नहीं हो सकती, परंतु वो अजघन्य कह सकते हैं हम उसको। इस तरह से एक एक पर सब लगा के देखेंगे। यहां सब पृच्छाओं को जोड़ 169 मात्र होता है, पृच्छाओं का जोड़ नहीं, पृच्छाओं की टोटल 169 कैसे आए? हाँ, 13 × 13, हाँ 13 प्रश्न है और हर एक में वो 12 लगाएंगे, यानी एक रख कर 12 लगाएंगे, यानी 13 के 13 के जोड़ हो जाएंगे सब। इसी कारण इस देशामर्शक सूत्र में अन्य 13 सूत्रों को देखना चाहिए, एक सूत्र में से 13 सूत्रों को देखना चाहिए। एक सूत्र हुआ सामान्य और ये अभी सब विशेष उसमें बताएंगे। अब 4 नंबर का सूत्र पढ़ते हैं। उक्कस्सावा अनुक्कस्सावा जहन्नावा अजहन्नावा। उक्त वेदना उत्कृष्ट भी है, पहले क्या पूछा था सूत्र में? नहीं, ज्ञानावरणीय की वेदना क्षेत्र की अपेक्षा उत्कृष्ट है कि अनुत्कृष्ट है, कि जघन्य है कि अजघन्य, प्रश्न तो इतना ही पूछा था। तो अब उसमें कहेंगे अब ये एक के ऊपर 12 लगाने की वो बात अभी नहीं शुरू हुई है। प्रश्न इतना ही पूछा था कि ज्ञानावरणी की वेदना उत्कृष्ट है क्या, अनुत्कृष्ट है कि जघन्य के अजघन्य है, तो उसके उत्तर में कहते हैं उक्त वेदना उत्कृष्ट भी है, अनुत्कृष्ट भी है, जघन्य भी है और अजघन्य भी है, चारों को। हाँ हाँ, क्योंकि उत्कृष्ट है ना, उत्कृष्ट अवगाना वाले को उत्कृष्ट होगी, जघन्य भी होगी, अजघन्य भी होगी, अनुत्कृष्ट भी होगी। ज्ञानावरणी की वेदना कैसी है तो चारों ही प्रकार से हो सकती है, क्षेत्र की अपेक्षा। हाँ हाँ, क्योंकि एक समय में कोई एक उसकी उसका क्षेत्र जो बताने हैं, अलग अलग जीवों की अपेक्षा ही बता रहे। हाँ, 13-13 को अभी नहीं लिया, 169, क्योंकि पहले नहीं, ये जो 13वां जो है ना, उत्कृष्ट है एक सूत्र हुआ, अनुत्कृष्ट है वो 13 हो जाएंगे, और उस उन 13 पर 12-12 लगेंगे। हाँ हाँ, पहले 13 सूत्र हो जाएंगे कि ज्ञानावरण की वेदना उत्कृष्ट है, अभी है तो फिर उस पर 12 और लगाएंगे, इस तरह से 13 हो गए टोटल। देखो, यह भी देशामर्शक सूत्र है, यानी सूत्र में तो चार ही बातें है करके बताए, 13 की बात नहीं आई थी, इसलिए यहां शेष 9 पदों को कहना चाहिए। देशामर्शक होने से ही इस सूत्र में शेष 13 सूत्रों का अंतर्भाव कहना चाहिए। उनमें पहले प्रथम सूत्र की प्ररूपणा करते हैं, वह इस प्रकार है। हाँ, इस प्रकार अंतिम लाइन में, ज्ञानावरणीय की वेदना क्षेत्र बराबर करना, क्षेत्र की अपेक्षा कथनचित थ के ऊपर बिंदी, कथनचित उत्कृष्ट है। अब ये पहला भेद बता रहे हैं ना, पहला सूत्र उसमें से बना रहे हैं, कौन सा, कथनचित उत्कृष्ट है। अभी वो अपेक्षा बताएंगे किसके उत्कृष्ट होती है, क्योंकि 8 राज्यों में मारणांतिक समुद्घात को करने वाले महामत्स्य के उत्कृष्ट क्षेत्र पाया जाता है। आठ राज्यों कैसे लिया? कौन? महामत्स्य, हाँ, तो महामत्स्य ने मारणांतिक समुद्घात करके कहाँ गया? वो नहीं, वो स्वर्ग तक जाने की बात कर रहे। कैसे कैसे होगा? 8 ऊपर 8 राजू कैसे गिन रहे आप? ऊपर नहीं, ऊपर 2 राजू ऊपर ले रहे आप, या 1 राजू आप ऊपर, मध्य लोक के ऊपर कहाँ जाएगा मत्स्य? मत्स्य कहाँ है? स्वयं भ्रमण में है। हाँ, तो ऊपर स्वर्ग तक कैसे जाएगा वो मारणांतिक समुद्घात करके? हाँ, ऊपर 1 राजू कहाँ पर? वो ऊपर स्वर्ग में लगा रहे हैं। आड़ा, आपको आड़ा कहना है, स्वर्ग में जाएगा ही नहीं, ख्याल है ना, 7वें नरक वाला है ये मत्स्य, वो 7वें नरक में जाने वाला है। 7वां नरक भी 6 राजू नीचे है। वो उसके पहले दूसरे दंड जो है उसकी अपेक्षा से उसको आधा राजू होगा ज्यादा। वहाँ क्यों जाएगा? वहाँ के नरक में जाएगा, इसलिए स्वर्ग। अच्छा, वो ऊपर जाने वाला, तो नरक की बात ना मत करो फिर। अच्छा, दोनों एक साथ ले रहे हैं आप, ऊपर जाने वाले और नीचे जाने वाले। अच्छा हाँ, तो नीचे 6 राज्यों तक जाएगी और ऊपर, ऊपर 16वें स्वर्ग तक। 16वें स्वर्ग तक क्यों नहीं जाएगा फिर? पंचम गुणसान वर्ती आप महामत से पकड़ रहे, क्यों नहीं? ऐसा आप, ऐसा है क्या आगे? क्योंकि पंचम गुणसान वर्ती 16वें स्वर्ग तक जा सकता है। तीरियंच 16वें स्वर्ग तक जा सकता है। देखो पढ़ेंगे अभी, ये आए नहीं, आगे की बात। 8 राज्यों में मारणांतिक समुद्घात करने वाले महामत्स्य के उत्कृष्ट क्षेत्र पाया जाता है। अभी दूसरी बात, कथंचित वह अनुत्कृष्ट है क्योंकि महामत्स्य को छोड़कर अन्यत्र अनुत्कृष्ट क्षेत्र देखा जाता है। तीसरी बात, 13 सूत्र बनाएंगे नहीं इसमें। कथंचित वह जघन्य है, देखो पहले उत्कृष्ट हुआ फिर अनुत्कृष्ट बताया, अब जघन्य है क्योंकि त्रिसमयवर्ती आहारक व त्रिसमयवर्ती तद्भवस्थ, वो भवस्थ करना, भवस्थ हुआ है, तद्भवस्थ सूक्ष्म निगोद जीव के जघन्य, जघन वो हुआ, जघन्य क्षेत्र पाया जाता है। देखो अवगाहना छोटी में छोटी कब होती है, तो वो भव ग्रहण के तीसरे समय में कहा ना, यहाँ देखो पहले कहा त्रिसमयवर्ती आहारक, तीसरे समय में आहारक, त्रिसमयवर्ती आहारक है ना, आहारक होकर 3 समय होना, हाँ आहारक होकर 3 समय है, और त्रिसमयवर्ती तद्भवस्थ नहीं, रुजुगति से गया हुआ ऐसा लेना, और वो भव का तीसरा समय और आहारक भी तीसरा समय ऐसा पकड़ना। नहीं नहीं, अवगाहना रुजुगति वाला ही लेना पड़ेगा यहाँ, रुजुगति से गए हुए उसी समय आहारक हुआ, आहारक होने के तीसरे समय में जो भव का भी तीसरा समय है तब उसको ये जघन्य अवगाहना होती है। हाँ नहीं, तीसरे समय में कम होती है, ये हमने पहले देखा था अवगाहना के भेदों में, वो तो उसकी हाँ फिर गोल होता है कुछ, हाँ ये पहले पढ़ा हुआ है अपना। हाँ नहीं नहीं, ये तो जीव कांड में भी हमने अवगाहना के भेदों में देखा था ना, सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्त, फिर जब भी हमने संदृष्टि देखी थी जीव कांड की अवगाहना के भेदों की, उसमें भी, इसमें भी आगे आएगी बात। नहीं नहीं नहीं, आहार ग्रहण करना विग्रह गति के बाद शरीर धारण करना, नो कर्म आहार, ये निगोद की बात है ना, निगोद की बात चल रही है, सूक्ष्म निगोद की बात चल रही है। आपको कंफर्म करना है तो जीव कांड निकालना, तो तीसरे समय में वो रुजुगति के गया हुआ ही चाहिए मेरे ख्याल से। प्रस्तावना में है ना, वो निकालो, आप निकालो, निकालो ना जल्दी से निकालो, सब लोग प्रस्तावना पढ़ के आना। अवगाहना के भेद कहाँ पर थे? 100 हाँ वही चार हिस्ट्री में देखने जा रही हूँ जीव समास के भेद। हाँ अवगाहन अधिकार 168 क्या 198 के आगे। हाँ 206 पर हुआ, मैं 106 पर देखने गई थी, मुझे ऐसा कुछ याद है। देखो पहला भेद। हाँ सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्त की जघन्य अवगाहना, उसी की बात है वो तीसरा। हाँ रुजु गति वाले ही है ना। हाँ हाँ देखो देखो। हाँ ज्ञानावरण की जघन्य क्षेत्रतः जघन्य वेदना, ऐसे सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त जीव के बतलाई है जो रुजुगति से उत्पन्न होकर है ना तद्भवस्थ होने के तृतीय समय में वर्तमान, और वो पहले ही समय से आहारक हुआ है तो उसका वो आहारक का भी तीसरा समय है और तृतीय समयवर्ती आहारक है, जघन्य योग वाला है तथा सर्व जघन्य अवगाहना से युक्त है। हाँ उत्कृष्ट उत्कृष्ट वेदना वाली तथा जो एक हजार योजन प्रमाण आए जो महामत्स्य स्वयंभू रमण समुद्र के बाह्य तट पर स्थित है। बाह्य तट पर है ना वो, तो इन्हें सेंटर से तो आधा राजू इधर है और उसको इस बाजू को आना है तो एक राजू वहां ट्रेवल करना पड़ेगा उसको। समुद्र के इस तट के नीचे उसका अगर नरक का बिल होगा तो पूरा एक राजू आड़ा करके फिर नीचे आएगा, और फिर खाली ऐसा नहीं उसको एक मोड़ ऐसा भी लेना पड़ेगा तो वो बढ़ेगा। हाँ तो तनुवाट पल्ले पर बाह्य तट पर स्थित है, वहां वेदना समुद्रात को प्राप्त होकर जो तनुवात वलय से संलग्न है तथा जो मारणांतिक समुद्घात को करते हुए तीन विग्रह कांडों को करके अनंतर समय में नीचे सातवीं पृथ्वी के नारकियों में उत्पन्न होने वाला है। तीन कांड किए उसने, दो मोड़ लिए, उसके ज्ञानावरण कर्म के क्षेत्र की अपेक्षा उत्कृष्ट वेदना होती है। ये बात आने वाली आगे। हाँ क्योंकि सातवां नरक तो छह राजू नीचे है। आधा ने पूरे दूसरे एंड को गया, उसके नीचे उसका नरक है। हाँ फिर नीचे जाके और उसको पूर्व पश्चिम जो कुछ अन्य दिशा में जाना है। हाँ सेंटर में नहीं, उसकी जो तीन डायमेंशन है ना, एक तो दक्षिणोत्तर है और एक पूर्व पश्चिम है। पूर्व पश्चिम और दक्षिण उत्तर ऐसे दो डायरेक्शन होते हैं ना, तो ये मध्य लोक से उसको नीचे जाना है तो यहाँ उसका है। तो पहले ऐसा एक राजू तक गया, फिर नीचे चला गया छह राजू, और फिर अंदर अभी ऐसा अंदर गया इस तरह से, फिर दोबारा इस तरह से आने का तो कोई प्रयोजन ही नहीं, नहीं तो वो डायरेक्ट जाता, ऐसे कोई घूमने का शौक नहीं उसको। हाँ तो ऐसे ऐसा अंदर दक्षिणोत्तर चला गया। हाँ एक राजू और चलाया, ये एक राजू, ये छह राजू और एक राजू। हाँ मानतिक समुदाय। हाँ ये आगे आएगी शायद बात। हाँ ये तीन आंकड़े हमने दिए, जघन्य क्षेत्र पाया जाता है निगोद को। अभी हम पांच नंबर पेज पर आए और पांचवी लाइन पढ़ेंगे, उसको नंबर देना चार। कथनचित अजघन्य है, देखो हमने उत्कृष्ट देखा अनुत्कृष्ट देखा जघन्य देखा भी अजघन्य, क्योंकि उक्त सूक्ष्म निगोद गो बराबर करना। सूक्ष्म निगोद जीव को छोड़कर अन्यत्र अजघन्य क्षेत्र देखा जाता है। अब कथनचित सादिक है, ये 5 नंबर पर कथनचित सादिक है, क्योंकि पर्यायार्थिक नय का आश्रय करने पर सब क्षेत्रों के सादिता पाई जाती है। सभी, क्योंकि उसको अवगाहना बदलती रहती है, तो हर जो कोई क्षेत्र जघन्य हो या उत्कृष्ट हो या अनुत्कृष्ट हो, अजघन्य हो, उसको तो जब उसमें आया उतने क्षेत्र में, तब उसकी आदि कही जाएंगी। अब कहते हैं 6 नंबर पर कथनचित अनादिक है। अब यहाँ अपेक्षा बदलेगी तो अनादि कहेंगे उसको। तो अनादि क्यों कहा? क्योंकि द्रव्यार्थिक नय का आश्रय करने पर अनादिपना देखा जाता है। ये क्षेत्र तो है ही है ना, उसको तो अनादि से ही है, कोई ना कोई क्षेत्र है ना, उसको द्रव्यार्थिक नय का आश्रय किया, उसका क्षेत्र है बस। 7 नंबर पर कथनचित वह ध्रुव है, क्योंकि द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा ज्ञानावरणीय का वर्णीय कर्म का क्षेत्र जो सब लोक है वह ध्रुव देखा जाता है। यानी ज्ञानावरणीय कर्म अभी सभी जीवों का है, अभी हमेशा ही रहेगा ना, पूरे लोक में जीव है, सूक्ष्म जीव तो ठस ठस भरे हुए हैं, तो ज्ञानावरणीय द्रव्य भी सभी पूरा में फैला हुआ है। तो द्रव्यार्थिक नहीं की अपेक्षा जो सब लोक है वो ध्रुव है। कथनचित अध्रुव है 8 नंबर पर, क्योंकि पर्यायार्थिक नहीं की अपेक्षा उक्त क्षेत्र के अध्रुवपना भी देखा जाता है। कथनचित वह ओज है 9 नंबर डाला, क्योंकि किसी क्षेत्र विशेष में कलियोज और तेजोज संख्या विशेष पाई जाती है। क्षेत्र नापेंगे तो कलियोज और तेजोज ये 2 भेद है। कलियोज किसको कहना, कल देखा था, हाँ, 4 से भाग देने पर हाँ, ये दोनों ही विषम फिगर है, तो कलियोज किसको कहना और तेजोज किसको कहना, हाँ, 3 बाकी रहेंगे तो क्या कहेंगे, कलियोज। हाँ, कल हमने देखे थे ना, एक तो 13 फिगर और एक है 15, 4 से भाग देंगे तो 1 रहेगा, तो कलियोज उसको कहा था मेरे ख्याल से ना, हाँ, 3 बाकी रहते थे और उल्टा हुआ। कलियोज यानी 1 बाकी रहे, 1 बाकी रहे यानी 13, 1 बाकी रहे, हाँ, और तेजोज में 3 बाकी यानी 15 को हम 4 से भाग देते हैं तो 3 बाकी रहते हैं, उसको तेजोज कहा। ये कथनचित ओज में आ गया। कथनचित वह युग्म है, इसके भी 2 भेद देखे थे, बादर युग्म और कृत युग्म। कृत युग्म में पूरा निशेष भाग जाता है और बादर युग्म में 2 बाकी रहते हैं। तो कथनचित युग्म है क्योंकि किसी क्षेत्र विशेष में कृत युग्म और बादर युग्म ये विशेष संख्याएं पाई जाती है। हाँ, 10 हो गया। कृत युग्म में 4 से भाग, 4 से निशेष भाग, अब कथनचित ओम है 11 नंबर पर, क्योंकि किसी क्षेत्र विशेष में हानि देखी जाती है। हमने देखा था ना, उसको व्यय कहा था वहां पर द्रव्य में, अब इसको क्षेत्र में हानि पाई जाती है तो हम कहेंगे वो ओम है। फिर कथनचित विशिष्ट है 12वें नंबर पर, क्योंकि कहीं पर वृद्धि देखी जाती है, हानि देखी जाती है तो ओम कहेंगे और वृद्धि है तो विशिष्ट कहेंगे। 13 नंबर पर कथनचित वह नोम नो विशिष्ट है, क्योंकि कहीं पर वृद्धि और हानि के बिना क्षेत्र का अवस्थान देखा जाता है। अवस्थान उतना का उतना क्षेत्र रहे ना, उसको कहते हैं अवस्थान। इस तरह से ये 13, ये तो हो गए 13 सूत्र तो यहाँ पर हो गए। अब हर एक पर 12-12 लगाएंगे तो वो सब टोटल 169 हो जाएगी। अब द्वितीय सूत्र का अर्थ कहते हैं वह इस प्रकार 169 सूत्र है ना टोटल करने। उत्कृष्ट ज्ञानावरणीय वेदना, अब उत्कृष्ट ज्ञानावरणीय वेदना पर 12 लगाएंगे। वो जघन्य और अनुत्कृष्ट नहीं है, क्योंकि वे उसके अप्रतिपक्ष भूत है। हमने देखा ना, वो क्या, वो जघन्य, सॉरी, वो उसके प्रतिपक्ष भूत है। मैंने गलत पढ़ा, यानी उत्कृष्ट ज्ञानावरणीय वेदना जघन्य नहीं कह सकते हम उसको, और उसको अनुत्कृष्ट भी नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। हाँ, कथनचित वह अजघन्य भी है, यानी अभी एक ये अप्लाई हुआ, जो नहीं है उसको हम नंबर नहीं देंगे, वो अजघन्य है, क्योंकि जो जघन्य नहीं उसको हम अजघन्य कह सकते हैं ना, क्योंकि जघन्य से ऊपर के समस्त विकल्पों में रहने वाले अजघन्य पद में उत्कृष्ट पद भी संभव है। ये ख्याल में आया, जो टॉप मोस्ट है वो भी 100, हमें 1 से 100 से देखेंगे, 100 वाला है वो उत्कृष्ट है और 1 है वो जघन्य है, तो 100 है वो जघन्य तो नहीं हो सकता और 100 है वो अनुत्कृष्ट भी नहीं हो सकता, परंतु जो 1 नहीं है वो 100 हो सकता है ना, जो जघन्य नहीं है, तो 2 से लेकर 100 तक सभी अजघन्य कह सकते हैं उसको। उस अपेक्षा से उत्कृष्ट वाला भी अजघन्य भेद में आ जाएगा। कथनचित वह सादिक भी है, जो है उसको नंबर देंगे ना, क्योंकि अनुत्कृष्ट क्षेत्र से उत्कृष्ट क्षेत्र की उत्पत्ति है। पहले अनुत्कृष्ट था, अभी उत्कृष्ट होगा तो हम कहेंगे उत्कृष्ट है वो सादिक हो गया। तीसरा पॉइंट, कथनचित वह अध्रुव भी है, क्योंकि उत्कृष्ट पद सर्वदा नहीं रहता, उस अपेक्षा उसको अध्रुव कहेंगे। चौथे पॉइंट पर, कथनचित वह कृतयुग में भी है, क्योंकि उत्कृष्ट क्षेत्र में बादर युग्म, कलियोज और तेजोज रूप विशेष संख्याएं नहीं पाई जाती, वो नहीं बराबर करना, न हो हुआ है। क्या कहा उन्होंने, उत्कृष्ट जो क्षेत्र में है उसमें कृतयुग्म ही होते हैं, बादर युग्म, कलियोज और तेजोज नहीं है, यानी युग्म है कहेंगे, ओज नहीं है कहेंगे, है ना। कथनचित वह नोम नो विशिष्ट भी है, अभी जो है उसमें कितना नंबर आया, 5 है ना, क्योंकि वृद्धि और हानि के होने पर उत्कृष्टपने का विरोध है। जब वृद्धि होगी तो उसको उत्कृष्ट तो हो ही नहीं सकती, उससे ऊपर कोई वृद्धि नहीं है, और हानि होगी तो उसको अनुत्कृष्ट कहेंगे, उसको उत्कृष्ट नहीं कहेंगे, इसलिए उत्कृष्ट जो है उसमें वृद्धि हानि नहीं होगी, उसमें अवस्थित हो सके, इसलिए नोम और नो विशिष्ट है, यानी ओम भी नहीं है विशिष्ट भी नहीं है, परंतु नोम नो विशिष्ट हो सकता है। इस प्रकार उत्कृष्ट ज्ञानावरणी वेदना 5 पद स्वरूप है, ये ख्याल में है ना, कौन से पंच पद प्रिय, ये यहाँ संख्या लिखनी थी उन्होंने, ये पांच के ब्रैकेट में पद लिखा है ना, तो उसमें पांच आंकड़ा डालना। देखो सात नंबर के पृष्ठ पर पहले पैराग्राफ के अंत में अनुत्कृष्ट वेदना नौ पदात्मक है, वहां नौ आंकड़ा डाला है, और मूल में प्राकृत में देखना पांच आंकड़ा डाला है। वैसे यहाँ ब्रैकेट में पद के बदले अंक डालना पांच का। समझ नहीं, अभी हम उत्कृष्ट पर तेरह पद लगा के देखे, उसमें से पांच उसमें पॉसिबल है। अब अनुत्कृष्ट पर लगाएंगे, कौन कौन से लगते हैं वो देखेंगे। अब कहते हैं अनुत्कृष्ट जो ज्ञानावरणीय वेदना है वो कथनचित जघन्य है, क्योंकि उत्कृष्ट को छोड़कर शेष सब नीचे के विकल्प रूप अनुत्कृष्ट पद में जघन्य पद भी संभव है। कथनचित वो अजघन्य भी है, जो जघन्य नहीं उसको अजघन्य भी कह सकते हैं, क्योंकि अनुत्कृष्ट अजघन्य का अविनाभावी है। तीसरी बात, कथनचित वह सादिक भी है। देखो उसको उत्कृष्ट नहीं कहा, अनुत्कृष्ट है वो उत्कृष्ट नहीं हो सकता, परंतु वो जघन्य हो सकता है अजघन्य हो सकता है। अब सादिक है क्योंकि उत्कृष्ट पद से अनुत्कृष्ट पद की उत्पत्ति है, तथा अनुत्कृष्ट से भी अनुत्कृष्ट विशेष की उत्पत्ति है। देखो अनुत्कृष्ट में भी जो हमने सौ को उत्कृष्ट कहा, उसके नीचे 99, 98, 97 वो सब अनुत्कृष्ट है, तो एक अनुत्कृष्ट से दूसरा अनुत्कृष्ट तक आ गया तो भी हम उसको सादी कहेंगे, और उत्कृष्ट में से अनुत्कृष्ट हुआ तो भी सादी कहेंगे, इसलिए वो कथनचित सादिक है। वह अनादिक नहीं है, चौथे पॉइंट पर, क्योंकि यहां अनुत्कृष्ट पद विशेष की विवक्षा है। अनुत्कृष्ट सामान्य की विवक्षा करने पर भी वह अनादि नहीं हो सकती, क्योंकि उत्कृष्ट से अनुत्कृष्ट पद में गिरने की अपेक्षा सादीपना देखा जाता है। अब कोई पूछेगा, यदि कहा जाए नित्य निगोद जीवों में उसका अनादिपना पाया जाता है, सो भी ठीक नहीं है, क्योंकि उनमें भी अनुत्कृष्ट पदों के पलटने से सादीपना पाया जाता है। यानी भले वो निगोद की एक विशिष्ट रेंज है, उसमें भी पलटना होता रहता है, बिल्कुल एक ही एक शेप उसका अवगाहना कायम नहीं है, इसलिए उसको भी अनादिपना नहीं हो सकता, अनादिक नहीं है कहा ना उनको, सादिक है कहा अनादिक नहीं है। अब सादी अनादि की बात हो गई। अब वह कथनचित वह अध्रुव भी है। अभी तक कितने है आए, चौथा चल रहे, अनादि नहीं है था वह, उसको नंबर नहीं डालना, जो है उसको नंबर डालेंगे, तो चौथा नंबर हम अध्रुव को डालेंगे, क्योंकि सर्वदा सर्वदा ने सभी कालों में एक अनुत्कृष्ट पद विशेष रह नहीं सकता, इसलिए उसको अध्रुव कहा। सामान्य का आश्रय करने पर भी ध्रुवपना संभव नहीं है, क्योंकि अनुत्कृष्ट से उत्कृष्ट पद को प्राप्त होने वाले जीव देखे जाते हैं। कथनचित वह ओज भी है, पांच नंबर डालना इसको, क्योंकि किसी पद विशेष में अवस्थित दोनों प्रकार की विषम संख्या पाई जाती है। ये कौन से दो प्रकार के विषम संख्या? हाँ मंजू बेन, अभी हमने देखे कलियोज और तेजोज। हाँ तो दोनों प्रकार की भी पाई जाती है, तो इसलिए ओज है कहा इसको, पांच नंबर हुए ना। कथनचित वह युग्म भी है, ये छठे नंबर पर, क्योंकि किसी अनुत्कृष्ट पद विशेष में दोनों प्रकार की सम संख्या देखी जाती है, मादर युग्म और कृत युग्म। कथनचित वह ओम भी है, ये सात नंबर पर। ओम किसको कहा था हमने? हानि वाले को। क्योंकि कहीं पर हानि से भी उत्पन्न अनुत्कृष्ट पद पाया जाता है। कथनचित वह विशिष्ट भी है, 8 नंबर डालना इसको। क्योंकि कहीं पर वृद्धि से अनुत्कृष्ट पद पाया जाता है, अनुत्कृष्ट के नीचे वाले से वो वहां तक आ गया या अजघन्य से उसमें आया, तो उसको कहेंगे उसको वह वृद्धि हुई यानी विशिष्ट हुआ। और 9 नंबर पर कथनचित वह नोम नो विशिष्ट भी है, क्योंकि अनुत्कृष्ट जघन्य में अथवा अनुत्कृष्ट पद विशेष की विवक्षा करने पर वृद्धि और हानि नहीं पाई जाती। इस प्रकार ज्ञानावरण की अनुत्कृष्ट वेदना 9 पदात्मक है। ये फाइनल रिजल्ट अपने को क्या आया? उत्कृष्ट वेदना हमने 5 प्रकार की देखी थी, हाँ, और यहाँ 9 पद वाली है। अब चतुर्थ सूत्र की अर्थ प्ररूपणा करते हैं। देखो पहले सूत्र में क्या बताया, प्रथम सूत्र की प्ररूपणा में वो 13 प्रकार की है ऐसे सामान्यपणे, वो कौन कौन सी है वो बताया। दूसरे सूत्र में बताया, उत्कृष्ट ज्ञानावरणी पर लगाया। तीसरे नंबर पर अनुत्कृष्ट ज्ञानावरण पर वो सभी 12 घटाएंगे, घटाया ऑलरेडी हमने देखा, उसमें से 9 पाए जाए। अब चतुर्थ सूत्र अभी शुरू होता है, जघन्य। हाँ, ये जघन्य ज्ञानावरणी की वेदना। अब इस पर 12 पॉइंट्स लगाएंगे। तो जघन्य है वो उत्कृष्ट कहलाएगी क्या? नहीं, कभी नहीं। तो उसको अनुत्कृष्ट कह सकते हैं? हाँ, उत्कृष्ट की अपेक्षा उसको अनुत्कृष्ट कह सकते हैं। तो पहला पॉइंट लिखा उन्होंने, कथनचित अनुत्कृष्ट है, क्योंकि अनुत्कृष्ट जघन्य ओग जघन्य से भिन्न नहीं है, यानी सामान्य जघन्य है उसको कह सकते हैं। कथनचित वह सादिक भी है, ये जघन्य की बात कही ना, तो जघन्य तो अनादि से नहीं है, तो उसको हाँ, क्योंकि अजघन्य से जघन्य पद उत्पन्न होता है। फिर कहते हैं तीसरे पॉइंट पर, कथनचित वह अध्रुव भी है, क्योंकि उसका सर्वदा अवस्थान नहीं रहता, यानी जघन्य ही जघन्य कायम रहे ऐसा नहीं है, तो उसको अध्रुव कहते, चेंज होता रहता है ना, इसलिए कहते अनादि नहीं है और ध्रुव पद उसके नहीं है, क्योंकि जघन्य क्षेत्र विशेष में अनादि एवं ध्रुवपना नहीं पाया जाता, यानी कायम जघन्य ही रहे ऐसा नहीं बन सकता, और अनादि से उतना का उतना रहे ऐसा भी नहीं बन सकता। कथनचित वह युग्म है, ये पॉइंट कितना? 4 नंबर है, क्योंकि उसे 4 से अपहृत करने पर शेष कुछ नहीं रहता। जघन्य में जघन्य ने एक ही उसको है, एक ही ऑप्शन है। तो उत्कृष्ट भी हमने कृतयुग में देखी थी राशि, है ना? देखो कथनचित युग्म है क्योंकि उसे 4 से अपहृत कुछ नहीं रहता। 5वां पॉइंट, कथनचित वह नोम नो विशिष्ट है। हाँ, क्षेत्र की अपेक्षा भी चल रही है, अभी वो द्रव्य की संख्या को भूल जाओ। ये हमने 10वीं पुस्तक में द्रव्य विधान देखा था, वहाँ यही सारे प्रश्न पूछे थे, तो वहाँ परमाणु की संख्या को लिया था। अब द्रव्य, ये ज्ञानावरण का द्रव्य जो है, ज्ञानावरण के कर्म कहो, द्रव्य मत कहो, ज्ञानावरण का कर्म कितना क्षेत्र व्यापता है उसकी बात यहाँ चल रही है। अवगाहना की अपेक्षा उसको कहना, हाँ, उसके जो प्रदेश है उसकी जो अवगाहना, आकाश का कितना क्षेत्र व्याप्ता है उसको अगर नापना है उन प्रदेशों को, तो जघन्य में और उत्कृष्ट में ये युग्म वाले देखे थे हमने। अब जो जघन्य है उसमें हानि हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, तो ओम नहीं है। वृद्धि हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो सकती है, मगर उसको जघन्य नहीं कहेंगे। तो इसलिए ओम भी नहीं है और विशिष्ट भी नहीं है, परंतु नोम नो विशिष्ट है। ये पांचवा नंबर लिया। इस प्रकार जघन्य क्षेत्र वेदना ज्ञानावरणी की चल रही ना, पांच प्रकार है, अथवा अपने रूप के साथ छह प्रकार है। अपना रूप है वो जघन्य है, उसके 13 सूत्र हमने अलग बनाए थे ना, 13 पहले 13 पॉइंट्स। इस प्रकार चतुर्थ सूत्र की प्ररूपणा की है, अब पांचवे सूत्र की प्ररूपणा करते हैं। वह इस प्रकार है, पांचवे पॉइंट पर अजघन्य को लेना है और उस पर 12-12 को लगाना है। अजघन्य ज्ञानावरणी वेदना कथनचित उत्कृष्ट है। जो अजघन्य है उसको उसके नीचे की अपेक्षा या जघन्य की अपेक्षा उत्कृष्ट कह सकते हैं, क्योंकि अजघन्य उत्कृष्ट ओघ उत्कृष्ट से पृथक नहीं पाया जाता है, सामान्य से उसको उत्कृष्ट कह सकते हैं। कथनचित वह अनुत्कृष्ट भी है, 2 नंबर देना इसको, क्योंकि वह उसका अविनाभावी है। जो अजघन्य है वह अनुत्कृष्ट भी है। कथनचित थ के ऊपर बिंदी लगाना है। तीसरा पॉइंट, कथनचित सादिक भी है, क्योंकि पलटने के बिना अजघन्य पद विशेषों का अवस्थान नहीं है। वो तो पलटते रहते ना, वो तो एक ही अवगाना कायम नहीं रहती, इसलिए उसको सादिक कहा। कथनचित अध्रुव भी है, चेंज होता रहता है, इसलिए उसको अध्रुव कहा। इसका कारण सुगम है। कथनचित वह ओज भी है, 5 नंबर देना इसको। युग्म भी है, ओम भी है और विशिष्ट भी है, सब बता दिया। क्या कथनचित ओज है अजघन्य ना, उसके बहुत वेरिएशन है, तो युग्म है 6 नंबर, ओम भी है 7 नंबर और विशिष्ट को 8 नंबर देना। यानी उसमें हानि और वृद्धि संभव है, इसका कारण सुगम है। कथनचित नोम नो विशिष्ट भी है, ये 9 नंबर देना इसको, क्योंकि यहाँ पद विशेष की विवक्षा है। इस प्रकार अजघन्य वेदना के 9 या 10 भंग होते, उसके ओरिजिनल को पकड़े तो 10, और उसके बिना अगर कहेंगे तो 9 होते हैं। यह पांचवें सूत्र का अर्थ है। अभी छठा सूत्र बताएंगे, सादिक ज्ञानावरणी वेदना। अब सादी और अनादि पर घटित करेंगे। ये सूत्र नंबर 6 है। अब उस पर ये 12 पॉइंट्स घटित करेंगे। फिर कथनचित उत्कृष्ट, क्योंकि सादी इतना ही देखना है, तो जो सादी है वो उत्कृष्ट भी हो सकती है, सभी पे सादी घटित होगा। तो कथनचित उत्कृष्ट, कथनचित अनुत्कृष्ट, कथनचित जघन्य, कथनचित अजघन्य, ये 4 तो उस पर लगेंगे ही लगेंगे। और अभी आगे के जो पॉइंट लगाने हैं उस पर, तो कहते कथनचित अध्रुव भी है, सादी है वो कथनचित अध्रुव भी है, चेंज होता रहते ना, और वह अनादि व ध्रुव नहीं है। जो सादी है वो अनादि कैसे कहेंगे उसको, और उसको ध्रुव भी नहीं कहेंगे, क्योंकि सादी पद के अनादि व ध्रुव होने का विरोध है। जो सादी है वो अनादि और ध्रुव नहीं हो सकता। क्या हो सकता है, अब आगे की बात करेंगे। तो कथनचित ओज, ये 6 नंबर है ना, कथनचित युग्म, कथनचित ओम, कथनचित विशिष्ट, नौ हो गए उसके, और कथनचित नौ नौ विशिष्ट भी है, यानी दस हो गए। इस प्रकार सादी वेदना के दस या ग्यारह भंग होते हैं। दस अक्षरों में नहीं लिख, अक्षर में दस भंग लिखना, दस भंग अथवा ग्यारह भंग होते हैं। यह छठे सूत्र का अर्थ है। ये आसान है ना, बिल्कुल। हाँ। अब अनादि ज्ञानावरण वेदना, ये नंबर है सातवां सूत्र का। वो जो अनादि है वो कथनचित उत्कृष्ट, कथनचित अनुत्कृष्ट, कथनचित जघन्य, कथनचित अजघन्य और कथनचित सादिक भी है। हाँ, सादिक को तो अनादि नहीं कहा, अनादि को सादिक क्यों कह रहे हैं? शंकाकार पूछ रहा है अनादि वेदना सादिक कैसे होता है? आचार्यों को पता था अश्विन भाई पूछने वाले हैं। ये दिव्य ध्वनि में भी कहते ना, सहज उसका उत्तर आता है। हाँ, जिसके मन में शंका हुई तो आपके मन में आते ही सामने उसका उत्तर हाजिर है, देखो समाधान। क्योंकि सामान्य की अपेक्षा वेदना के अनादि होने पर भी उत्कृष्ट आदि पद विशेषों की अपेक्षा उसके सादि होने में कोई विरोध नहीं है। ये अनादि कहा ही हमने, सामान्य की अपेक्षा उसको अनादि कहा था। तो जो अनादि है सामान्य की अपेक्षा, वही विशेष की अपेक्षा सादी होता है ना। सामान्य की अपेक्षा अनादि था, वही विशेष की अपेक्षा देखो तो, यानी उसमें ये पांचों ही घटित हो गए, उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट अजघन्य जघन्य और फिर सादिक भी घटित होगा। पांच हो गए ना यहाँ पर, उत्कृष्ट हुआ, अनुत्कृष्ट हुआ, जघन्य भी हुआ, अजघन्य, क्योंकि ये तो विशेष है, उसके भेद है। सामान्य से सबको एक साथ हम ले गए और कथनचित सादिक भी हुआ। अब आगे कहते हैं कथनचित वह वेदना ध्रुव है, क्योंकि अनादि भी सामान्य की अपेक्षा कहते तो उसको ध्रुव भी कह सकते हैं, सामान्य की अपेक्षा देखो, क्योंकि सामान्य का कभी विनाश नहीं होता। अब कहते कथनचित वह अध्रुव भी है, क्योंकि पद विशेष का विनाश देखा जाता है, किसी विशिष्ट पद की अपेक्षा उसको अध्रुव भी कह सकते हैं। शंका, सामान्य विवक्षा के अनादित्व के होने पर पद विशेष की संभावना ही कैसे हो सकती है? क्या कहते हैं, अनादि आपने नाम दिया सामान्य की अपेक्षा, फिर उसमें विशेष की अपेक्षा लगाते ही कैसे हो? उसका समाधान नहीं, क्योंकि अपने भीतर समस्त विशेषों के रखने वाले सामान्य की विवक्षा होने पर उसमें कोई विरोध नहीं है। सामान्य किसको कहा? अपने भीतर समस्त विशेषों को रखने वाला सामान्य, सभी विशेषों को हम उसमें डुबा देते हैं तभी सामान्य कह दिया ना हमने। जैसे हम बहुत बार उदाहरण दिया ना, सभी जैनियों की सभा है, तो उसमें कौन कौन है? हाँ, तो दिगंबर है, श्वेतांबर है, स्थानकवासी है और जो कोई जितने जैनों के भेद है सब आए। तो किसी ने पूछा उसमें वो श्वेतांबर है कि नहीं, दिगंबर है कि नहीं। अब सबको मिलकर हमने सामान्य कह दिया ना जैन, तो उसमें सभी विशेष भी है, तो उसके अंदर डुबो दिया, उसको गर्भित कर दिया है। ये हमने सात देखे थे ना, अभी कथनचित वह ओज है आठवां नंबर, कथनचित युग्म, कथनचित ओम, कथनचित विशिष्ट और कथनचित नौ नौ विशिष्ट भी है। ये सब सारे उसके विशेष की अपेक्षा बता दे रहे हैं। कितने बारह हुए ना इसके? तो अनादि वेदना के बारह या तेरह भंग, बारह भंग अथवा तेरह भंग होते हैं। यह सातवें सूत्र का अर्थ है, यानी वो अनादि को पकड़ो तो तेरह हो जाएंगे, यानी अनादि पर सभी घटित हो गए। 13 के 13 हाँ, उसको इंक्लूडिंग इट्सेल्फ। अब जो ध्रुव ज्ञानावरणी वेदना, ये सूत्र नंबर कौन सा होगा अभी? 8वां। हाँ, ये जो ध्रुव ज्ञानावरणी वेदना, कथंचित उत्कृष्ट, कथंचित अनुत्कृष्ट, कथंचित जघन्य, कथंचित अजघन्य। देखो ये ध्रुव भी सामान्य की अपेक्षा कहाँ है, इस पर भी घटित करेंगे अभी सभी। अभी तक तो 4 हो गए ना, कथंचित अजघन्य, कथंचित सादी 5 नंबर, कथंचित अनादि इसको 6 नंबर डालेंगे, कथंचित अध्रुव 7 हुआ, कथंचित ओज 8 हुआ, कथंचित युग्म 9 हुआ, कथंचित ओम, ओम यानी हानि 10 हुआ, कथंचित विशिष्ट यानी वृद्धि 11 हुआ, कथंचित नोम विशिष्ट 13 हुए, 12 हुए। इस प्रकार ध्रुव पद के 12 अथवा 13 भंग होते हैं, क्योंकि उसको ध्रुव को भी पकड़ो तो 13 भंग हो जाएंगे। यह 8वें सूत्र का अर्थ है। अब 9वां सूत्र कहेंगे यहां पर। अध्रुव ज्ञानावरणी वेदना, जो अध्रुव है वो कथंचित उत्कृष्ट, कथंचित अनुत्कृष्ट, कथंचित जघन्य, कथंचित अजघन्य, कथंचित सादी। देखो अनादि को छोड़ा, पहले 4 तो ले लिए, उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट अजघन्य जघन्य, अब ये कथंचित सादी है, 5 नंबर डाला, कथंचित ओज, कथंचित युग्म, ये दोनों को लिया, कथंचित ओम, कथंचित विशिष्ट, इसको भी दोनों को लिया, और कथंचित नो विशिष्ट। इस प्रकार अध्रुव पद के 10 अथवा 11 भंग होते, भ के ऊपर बिंदी लगाना, भंग होते हैं। यह 9वें सूत्र का अर्थ है। जो अध्रुव है उसको आदि और ध्रुव नहीं है ऐसा लिया, जो अध्रुव है वो आदि का नहीं, आदि नहीं लगाया उस पर, और ध्रुव भी नहीं लगाया, कथंचित ध्रुव नहीं कहा ना उसको, उसके 10 ही भंग हुए। अब 10वें नंबर का सूत्र, ओज ज्ञानावरणीय वेदना उत्कृष्ट और जघन्य पदों में नहीं होते, ये पहले भी आया था, क्योंकि उत्कृष्ट और जघन्य ये कौन से है? कृतयुग्म राशि, हमें कृतयुग्म संख्या उसकी, क्षेत्र की कृतयुग्म है, तो उत्कृष्ट और जघन्य इसमें नहीं होगे, क्योंकि उनका अवस्थान कृतयुग्म राशि में है, इसलिए यानी उत्कृष्ट और जघन्य को टाल कर भी बात करेंगे। वह कथंचित अनुत्कृष्ट, कथंचित अजघन्य, वह कथंचित सादी है, क्योंकि अन्य में से उसमें आए तो सादी कहेंगे उसको। कथंचित अनादि भी है, क्योंकि सामान्य की विवक्षा है, बस विषम संख्या है, बस इतना ही लेना, तो कथंचित अनादि भी है। कथंचित वह ध्रुव भी है, क्योंकि उसी सामान्य की ही विवक्षा है। कथंचित वह विशेष की विवक्षा से अध्रुव भी है, विशेष की विवक्षा से अध्रुव है। शंका, द्रव्य विधान में अनादि और ध्रुव पदों की प्ररूपणा क्यों नहीं की गई है? समाधान, नहीं, क्योंकि वहां सामान्य की विवक्षा का अभाव है। यदि सामान्य की विवक्षा अभिष्ट हो तो वहां भी इन दो पदों को कहना चाहिए। यह अध्रुव तक आए ना अभी हम, अब आगे। वह कथंचित ओम, किसकी बात चल रही है? ओज की। कथनचित ओम यानी 7 नंबर आया, कथनचित विशिष्ट 8 नंबर, कथनचित नो ओम नो विशिष्ट 9 नंबर। इस प्रकार ओज पद के 9 भंग अथवा 10 भंग होते हैं, यह 10वें सूत्र का अर्थ है। अब ओम युग्म ज्ञानावरणी वेदना, ओज के बाद युग्म की बात करेंगे, ये 11वां सूत्र है। कथनचित उत्कृष्ट, उत्कृष्ट और जघन्य तो है ही इसमें युग्म में, और बीच वाले अजघन्य अनुत्कृष्ट वो भी उसमें सब हो जाएंगे। तो कथनचित उत्कृष्ट, कथनचित अनुत्कृष्ट, कथनचित जघन्य और कथनचित अजघन्य, ये तो चारों ही है उसमें। कथनचित सादी, कथनचित अनादि, कथनचित ध्रुव, जब सामान्य की अपेक्षा लगाएंगे, कथनचित अध्रुव, कथनचित ओम, वृद्धि हो सकती है, हानि हो सकती है, कथनचित विशिष्ट, ये हानि वाला, और कथनचित नोम नो विशिष्ट भी है। इस प्रकार युग्म पद के 11 अथवा 12 भंग होते हैं, यह 11वें सूत्र का अर्थ है। देखो इसमें युग्म में ओज नहीं होगा, जो युग्म है वो नहीं होगा। अब ओम ज्ञानावरणी वेदना की बात करेंगे, 12 नंबर का सूत्र। वो कथनचित, ये जो ओम है वो उत्कृष्ट और जघन्य पद उसमें नहीं होगे, हमने देखा, क्योंकि वो कृतयुग्म राशि है। सॉरी ओम यानी हानि, तो उत्कृष्ट में हानि होगी तो उसको उत्कृष्ट नहीं कहेंगे, तो इसमें अनुत्कृष्ट होगा, और जघन्य में और हानि संभव नहीं है, इसलिए उत्कृष्ट और जघन्य दोनों पद नहीं उसमें, तो ये अजघन्य यानी अनुत्कृष्ट, अजघन्य। फिर कथनचित साधी भी है और कथनचित अनादि भी है, क्योंकि ओमत्व सामान्य की विवक्षा है। इसी कारण से वह कथनचित ध्रुव भी है सामान्य की अपेक्षा, कथनचित वह अध्रुव भी है, बदलता रहता है, तो ये अध्रुव भी कहेंगे उसको। सामान्य की न विवक्षा होने से द्रव्य विधान में म के बदले में ओम के अनादि और ध्रुव पद नहीं कहे गए हैं। ये द्रव्य विधान ने जहां संख्या की बात गए, 10वें पुस्तक में हमने देखी थी उसकी बात है यहाँ। ओम ज्ञानावरण में 10वें पुस्तक में जहां द्रव्य की बात थी, वहां अनादि और ध्रुव नहीं कहा था उसको, परंतु क्षेत्र में कहा है। यह सामान्य और विशेष की अपेक्षा होती है, इसलिए वह कथनचित ओज और कथनचित युग्म भी है। 7 और 8 नंबर है ना, हाँ, और ध्रुव को 6ठा नंबर दिया था। इस प्रकार ओम पद के और के भी हटा दो। ओम में जो ओम के लिखा है वो ओम लिखना, के भी निकालो और 8 भी निकालो। ओम पद के 8 अथवा 9 भंग होते हैं, यह 12वें सूत्र का अर्थ है। अब विशिष्ट ज्ञानावरणीय वेदना, विशिष्ट है ना उसमें, हाँ वृद्धि होती है तो उसको हम विशिष्ट कहते हैं। ये 13 नंबर का सूत्र भी कह रहे हैं हम, कथनचित अनुत्कृष्ट, क्योंकि वृद्धि होगी तो उत्कृष्ट में तो वृद्धि नहीं होगी, और जगन्य में भी होगी तो उसको हम जगन्य नहीं कहेंगे। तो ये अनुत्कृष्ट, कथनचित अजघन्य, कथनचित सादी, कथनचित अनादि, कथनचित ध्रुव। अभी सामान्य की अपेक्षा करते तो वह अनादि और ध्रुव वगैरह कहते हैं। कथनचित अध्रुव, कथनचित ओज और कथनचित युग्म भी है, क्योंकि वृद्धि की केवल अपेक्षा है, वो तो ओज राशि है कि युग्म राशि उसकी कोई बात नहीं है। इस प्रकार विशिष्ट पद के, अब विशिष्ट है वो ओम नहीं हो सकता, जो वृद्धि है वो ओम नहीं कह सकते उसको, जो वृद्धि है उसको नोम नो विशिष्ट भी नहीं कह सकते, इसलिए उन दोनों को ही निकाल दिया। विशिष्ट पद के 8 अथवा 9 भंग होते हैं, यह 13वें सूत्र का अर्थ है। अब नोम नो विशिष्ट ज्ञानावरणीय वेदना, ये अंतिम है ना, कथनचित उत्कृष्ट यानी उतनी के उतनी रहने वाली, कथनचित अनुत्कृष्ट ये सब पर लगाए, कथनचित जघन्य, कथनचित अजघन्य, कथनचित सादी भी है। कथनचित वह अनादि भी है, क्योंकि नोम नो विशिष्ट सामान्य की विवक्षा है, इसी कारण से वह कथनचित ध्रुव भी है, सामान्य की विवक्षा करने पर कथनचित ध्रुव भी उसको कहेंगे। वह कथनचित अध्रुव, कथनचित ओज और कथनचित युग्म भी है, 8, 9 और 10। इस प्रकार नोम नो विशिष्ट पद के 10 भंग अथवा 11 भंग होते हैं, यह 14वें सूत्र का अर्थ है। इन भंगों का अंक विन्यास इस प्रकार है, पहले 13 भंग देखे हमने, उत्कृष्ट के 5 देखे, अनुत्कृष्ट के वो इस तरह से हमने जो सारे देखे थे, 13, 5, 9, 5, 9, 10, 12, 10, 9, 10, 8, 8 और 10, टोटल 131 हुए। 169 इसमें प्रश्न निकाले थे, उसमें है वाले कितने हैं, वो A131। बाकी चर्चा हम कल करेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो लो। अश्विन भाई।